अध्याय 64 मसीह हमारा महायाजक। स्वर्गीय मंदिर के सेवा कार्य के संबंध में सही सही ज्ञान ही हमारे विश्वास की बुनियाद है। पार्थिव मंदिर का निर्माण मूसा ने उस आदर्श के अनुसार किया था जो उसको पर्वत पर दिखलाया गया था। ये तो वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है जिसमें चढ़ावे और बलिदान चढ़ाए जाते हैं। उसके दो पवित्र स्थान स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप थे। मसीह हमारा प्रधान याजक पवित्र स्थान का और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं परंतु परमेश्वर ने खड़ा किया। जब एक दर्शन में यूहन्ना प्रेरित को स्वर्ग में के मंदिर की एक झलक दिखाई गई थी, उस समय उसने 7 अग्निदीपक सिंहासन के आगे जलते देखे। नबी को स्वर्ग के मंदिर के प्रथम कमरे को देखने की आज्ञा मिली और उसने वहां अग्नि के 7 दीपक और सोने की वेदी, जिसको पृथ्वी पर के मंदिर में के सोने के दीवट और धूपदानी से प्रकट किया जा रहा था, देखे। फिर ईश्वर का मंदिर खोला गया और उसने पर्दे के अंदर महान स्थान को देखा। यहां उसने नियम का संदूक देख, जिसको मूसा द्वारा निर्माण हुए पवित्र संदूक से प्रकट किया गया कि उसमें परमेश्वर की व्यवस्था रखी जाए। यूहन्ना कहता है कि उसने मंदिर को स्वर्ग में देखा। वह मंदिर जिसमें यीशु हमारे लिए काम करता है असली है, जिसका मूसा द्वारा निर्माण किया गया। स्वर्गीय मंदिर राजाओं के राजा के निवास स्थान का, जहां हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे हैं और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर हैं। वह मंदिर जो अनंत सिंहासन की महिमा से भरा है, जहां उसके चमकीले पहरेदार साराबदूत उसकी भक्ति में अपने मुंह को ढांपे रहते हैं। कोई जागतिक भवन उसके विस्तार व महिमा को प्रकट नहीं कर सकता। तो भी स्वर्गीय मंदिर और मानव के त्राण के प्रति जो महान कार्य वहां जारी है, उनके विषय में महत्वपूर्ण सत्यों को पृथ्वी पर के मंदिर और उसके सेवा कार्य द्वारा सिखलाना जरूरी था। स्वर्गारोहण के बाद हमारे त्राणकर्ता को महायाजक का काम शुरू करना था। पौलुस कहता है, ख्रीष्ट ने हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे का दृष्टांत है, प्रवेश नहीं किया, परंतु स्वर्ग ही में प्रवेश किया कि हमारे लिए अब ईश्वर के सन्मुख दिखाई देवे। मसीह की सेवकाई में दो बड़े भाग सम्मिलित थे और प्रत्येक विशेष समय तक के लिए था, और स्वर्गीय मंदिर में एक विशेष स्थान रखता। उपासना के दो भाग थे, दैनिक और वार्षिक उपासना, और प्रत्येक को तंबू का एक विभाग अर्पित था। जिस प्रकार मसीह अपने स्वर्ग आरोहर पर परमेश्वर के सम्मुख हाजिर था कि पश्चातापी विश्वासी के संती अपनी लोहू पेश करे, उसी प्रकार पवित्र स्थान में याजक पापी के लिए दैनिक सेवाकाई में बलिदान का रक्त छिड़का करता था। मसीह का लोहू यद्यपि पश्चाताप करने वाले पापी को व्यवस्था के दंड से छुटकारा दे सकता था, तो भी वह पाप को मिटाया। उसका रिकॉर्ड तो मंदिर में अंतिम प्रायश्चित के दिन तक रखा रहता। उसी प्रकार प्रतिरूप में भी पाप बलि का लोहू पश्चात करने वाले के पाप तो मिटा डालता था, पर वह मंदिर में प्रायश्चित के दिन तक बना रहता था। अंतिम प्रतिफल के महान दिवस में, जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मुर्दों को न्याय किया जाएगा। तब मसीह के प्रायश्चित के लोहू के सबब वास्तविक पश्चातापी लोगों के पाप स्वर्ग की पुस्तकों से मिटाए जाएंगी। इस प्रकार मंदिर पाप के समस्त रिकॉर्ड से स्वतंत्र अथवा शुद्ध किया जाएगा। प्रायश्चित अथवा पापों के मिटाए जाने के कार्य का प्रतिरूप में प्रायश्चित के दिन की उपासनाओं से प्रतिनिधित्व किया जाता था। प्रायश्चित अर्थात पार्थिव मंदिर की शुद्धि पाप बलि के लोहू के द्वारा उन पापों को धोने से की जाती थी जिनसे वह मंदिर अशुद्ध हो गया था। शैतान हमारे मस्तिष्कों को व्यस्त रखने के लिए अनगिनती युक्तियों का आविष्कार करता है, जिससे वे उस काम में ध्यान न दें जिससे हमें भली भांति परिचित होना चाहिए। सरदार धोखेबाज उन विशाल सत्यों से घृणा करता है जिनसे प्रायश्चित की बलि और शक्तिमान मध्यस्थ का ख्याल दृष्टि में आता है। वह जानता है कि यीशु और उसके सत्यों से लोगों के ख्यालों को हटाने पर ही उसका सारा काम अवलंबित है। यीशु उनके पक्ष में अपने घायल हाथों को, अपने कुचले देह को पेश करता है और अपने अनुयायियों से घोषणा करता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। फिर तो किसी को भी अपने दोषों को असाध्य नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर उनको पराजय करने के लिए विश्वास और अनुग्रह प्रदान करेगा। हम इस समय प्रायश्चित के महान दिवस में रहते हैं। प्रतिरूप उपासना में जब प्रधान याजक इसराइलियों के लिए प्रायश्चित कर रहा था, तो सभों से ये कहा जाता था कि अपनी आत्माओं को पापों से पश्चाताप करने और परमेश्वर के सन्मुख दीनता धारण करने द्वारा दुख दें, कहीं ऐसा न हो कि वे लोगों में से अलग कर दिए जाएं। इसी प्रकार जो अपना नाम जीवन की पुस्तक में रखवाना चाहते हैं, वे अपने अनुग्रह काल के शेष दिनों में पाप के लिए शोक और सच्चे पश्चाताप द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी आत्माओं को दुख दें। मनों की सच्ची और पूर्ण रीति से छानबीन होनी चाहिए। बहुत से मसीही लोगों को नीच हंसी ठट्टे की प्रकृति को अपने से दूर करना चाहिए। जो लोग दुष्ट प्रकृतियों पर जो आत्मा पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, जय प्राप्त करना चाहते हैं, त्राण सामूहिक रूप में नहीं होगा। एक की पवित्रता तथा भक्ति दूसरे व्यक्ति की त्रुटियों उपस्थित होंगी, तो भी वह हर एक जन का मामला ऐसे छानबीन के साथ जांचेगा, मानो कि पृथ्वी पर कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं। हर एक की जांच होनी अनिवार्य है और उसको कलंक, झुरी अथवा कोई ऐसे वस्तु से रहित पाया जाना चाहिए। प्रायश्चित के समाप्त होने के कार्य के साथ गंभीर दृश्य संबंधित है, उसमें महत्वपूर्ण हित निहित है। इस समय न्याय का कार्य स्वर्गीय मंदिर में हो रहा है। बहुत वर्षों से ये कार्य जारी है। शीघ्र ही, कोई नहीं जानता कितना शीघ्र, जीवित लोगों के मामले सामने आएंगे। परमेश्वर की भयानक उपस्थिति में हमारे जीवन पुनरावलोकन के लिए पेश होंगे। इस समय सब कुछ छोड़ के प्रत्येक जन के लिए उचित है कि त्राणकर्ता के इस उपदेश पर ध्यान दे। जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो वो समय कब होगा। जब जांच के न्याय का काम समाप्त हो जाएगा, तो सबके भाग्य का निर्णय जीवन अथवा मृत्यु के लिए हो चुकेगा। प्रभु के स्वर्ग के मेघों में आने से थोड़ी देर पूर्व अनुग्रह काल समाप्त हो चुकेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मसीह इस समय की प्रतीक्षा करते हुए घोषणा करता है, जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए बदला मेरे पास है। धर्मी और अधर्मी दोनों अपने नश्वर स्थिति में पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। लोग पेड़ लगाएंगे और मकान बनाएंगे, खाते पीते रहेंगे, पर इस बात से अज्ञान रहेंगे कि स्वर्गीय मंदिर में अंतिम अटल निर्णय की घोषणा हो चुकी है। खामोशी के साथ अर्धरात्रि के चोर की नाई चुपके चुपके वह अंतिम निर्णय की घड़ी आ जावेगी, जो हर एक मनुष्य के भाग्य को स्थिर कर देगी और अपराधी मनुष्य के लिए दया का दरवाजा सदा के लिए बंद कर देगा।